नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। परम श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी श्री शांतात्मानंद जी महाराज, समादरणीय झुंझुनवाला जी, आदरणीय खेतान जी, श्री कानोड़िया जी, समुपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग पुनः श्री रामकृष्ण मिशन के इस पावन प्रांगण में और सात्विक प्रांगण में भगवान कृष्ण की जो दिव्याति दिव्य कथा है, जो भागवत का रहस्य है, श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद, हिंदी ट्रांसलेशन जब हो रहा था गीता प्रेस में, जो कि हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के द्वारा किया हुआ है, आज भी जो उपलब्ध है गीता प्रेस में हिंदी ट्रांसलेशन, उस समय कुछ लोगों ने सलाह दिया भागवत में महाराज को सुन करके कई लोगों के मन में शंकाएं होती हैं, संस्कृत तो सब लोग जानते नहीं, हिंदी ट्रांसलेशन में फिर और शंका होगी, तीन पांच अध्यायों को अगर नहीं लिया जाए तो कैसा रहेगा। हमारे गुरुदेव ने कहा यह वैसा ही रहेगा कि जैसे किसी शरीर से प्राण अलग कर दिए जाए तो शरीर कैसा होगा। ये महाराज के पांच अध्याय या ये गोपी उद्धव संवाद, ये भागवत का प्राण है। हमारी समझ में नहीं आता तो हमको अपना स्तर बढ़ाना होगा, हमको अपनी साधना बढ़ानी होगी। नहीं समझ में आता इसका अर्थ नहीं है कि वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, ये ब्रज का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम। ब्रज के एक महात्मा ने कहा है, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ ही सके ना। ये रस की जो बातें हैं, भगवत प्रेम की जो बातें हैं, ये जब तक इस रास्ते पे नहीं आएगा वो नहीं समझेगा। ये दुनिया के लोग हाई एजुकेटेड भी हो जाएं, वो नहीं समझ सकेंगे। और मैं तो वही बार बार कहता हूं, अगर उद्धव जैसे विद्वान पंडित, उनसे बड़ा एजुकेटेड तो आज कोई नहीं होगा, वो नहीं समझ सके तो आज कोई दावा नहीं कर सकता है। उद्धव जी ने जब किशोरी जी की बातें सुनी, भ्रमर को उद्देश्य करके जो उन्होंने कहा श्री कृष्ण के विषय में, उद्धव जी को निश्चय पता लग गया, उनको प्रेम की शिक्षा लेने के लिए यहां भेजा गया है। देखना कृष्ण प्रेम क्या होता है, अगर ये देखना हो, उद्धव जी ने यही शब्द का प्रयोग किया, अथोद्धवो निशम्यैवम कृष्ण दर्शन लालसाह, कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन लालसा का अगर मूर्तिमान विग्रह देखना हो तो उद्धव जी कहते हैं वो राधा रानी है, वो गोपियां हैं, वो नंद बाबा यशोदा मैया है। लालसा कैसी होती है कृष्ण प्राप्ति की, कृष्ण दर्शन की, अगर वो देखना हो तो इनको देखो, वो पता लगेगा कि जीवन कैसा होता है कृष्ण प्रेमी का, भगवत प्रेमी का। भगवती राधिका राधा रानी जब पुनः महाभाव की दशा में जाती हैं, उद्धव जी महाराज पुनः जमीन में लेट करके साष्टांग प्रणाम करते हैं उनके चरणों में। अगर शरीर स्वस्थ है तो हमारी परंपरा है सनातन धर्म की, गुरु के चरणों में और अपने आराध्य के चरणों में साष्टांग जमीन पे लेट के प्रणाम करना चाहिए। साष्टांग लेटने का अर्थ होता है पूर्ण समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। लेकिन अब आजकल वो सबके लिए संभव नहीं है। हमारे गुरु जी कहते थे ठीक है विधि ये है, लेकिन अगर सब शिष्य इसको फॉलो करना लग जाएं, तो कई शिष्यों को तो गुरु को ही उठाना पड़ेगा, फिर लेट तो वो जाएंगे, उठाएगा कौन उनको। साष्टांग लेट जाएंगे, फिर उनसे उठा नहीं जाएगा। तो इसीलिए हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, चरण स्पर्श करके प्रणाम करो। प्रणाम का अर्थ होता है समर्पण, हाथ जोड़ने का अर्थ होता है कर्म शक्ति का समर्पण, सिर झुकाने का अर्थ होता है अपने ईगो का समर्पण, मान्यताओं का समर्पण। ये हमारे यहां प्रणाम का अभिप्राय है। उद्धव जी महाराज तो स्वस्थ थे, युवा थे, वो साष्टांग जमीन में लेट करके प्रणाम करते हैं किशोरी जी को, और वो कहते हैं अहो यूयस्म पूर्ण अर्थाः भवत्यो लोक पूजिताः। अरे ब्रजवासियों, आप सारे संसार के पूज्य हो, आपने अपने जीवन के अर्थ को प्राप्त कर लिया है। पूर्णार्थाः, जिन्होंने पूर्ण अर्थ को प्राप्त कर लिया है। अब आजकल अर्थ का अर्थ तो अलग ही लगाते हैं। हाँ, अर्थ माने क्या समझते हैं आजकल? पैसा, संपत्ति। हाँ, वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण। हाँ, अच्छा, पैसा कमा के भी व्यक्ति क्या चाहता है? सुख चाहता है कि दुख? क्या चाहता है? सुख चाहता है, लेकिन मिलता है? क्यों भाई, यहां बहुत लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत होगा, हमारे आगे के पंक्ति में तो बैठे ही है, हमारे बहुत नजदीकी हैं, इसलिए मैं कुछ भी बोल लेता हूं। हाँ, झुंझुनवाला जी हैं, खेतान जी हैं, कानोड़िया जी हैं, हमारे और बैठे हैं गोयल, जिंदल जी, गोयल जी। पैसा कोई दोष नहीं है, लक्ष्मी भगवान की अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, लेकिन जब लक्ष्मी अकेले होती हैं तो दोष है। लक्ष्मी नारायण के साथ रहें तो बहुत खुशी की बात है। हा? और हमारे यहां जो ये प्रतीक है ना, प्रतीक, लक्ष्मी नारायण के वाहन गरुड़ जी है। गरुड़ जी आप जानते हैं ना, लक्ष्मी नारायण जब चलते हैं तो किस पे बैठते हैं? गरुड़ जी पे। और लक्ष्मी जी जब अकेले चलती हैं तब किस पे बैठती हैं? उल्लू पे। तो जो लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करे वो तो गरुड़ है, और जो नारायण को छोड़ के खाली लक्ष्मी जी की पूजा करे, मैं क्यों बोलूं भाई नया साल शुरू होने वाला है। उल्लू का अर्थ है बेवकूफ। समाज में कोई नासमझ व्यक्ति होता है, बोलते हैं उल्लू गए, माने जीवन भर पैसा कमाएगा लेकिन वो भी पैसा उसके साथ या तो हमेशा रहने वाला नहीं, रहेगा भी तो किसको देना चाहता उसको मिलेगा नहीं, जिसको नहीं देना चाहता वो ले जाएगा, जहां नहीं खर्च करना चाहता वहां खर्च हो जाएगा। पैसे के 15 दोष भागवत में लिखे हुए, अर्थ के 15 अनर्थ भागवत में लिखे हुए। अभिमान, भय, लोगों के प्रति अनास्था, कुछ भी करने की इच्छा, मांगने वालों से चिंता, गवर्नमेंट से चिंता, मोदी जी से चिंता, कब क्या नियम लगा दे, जितने गड़बड़ काम करते हैं वो सब परेशान भयभीत है, क्या करें। अर्थ का अनर्थ, अर्थ के 15 अनर्थ, जब वो अलग रहता है, स्वतंत्र रहता है। 8 नवंबर को मैं जबलपुर में प्रवचन कर रहा था स्वामी जी, ऐसे सत्संग चल रहा था, समय था 6 से 8 या 8:30, 7:45 बजते बजते आपस में श्रोताओं में प्रवचन सुने नहीं, चर्चा हुई, उससे कुछ कहे, उससे कुछ कहे, और आधे तो उठ के चले गए बिना प्रणाम किए। मैं सोचा आज हुआ क्या, बाद में पता लगा, समझ गया क्या हुआ था नोटबंदी डिक्लेयर हो गई थी, सब सत्संग छोड़ के बीच में बिना प्रणाम किए भाग गए। मैंने कहा भाई लक्ष्मी का बड़ा प्रभाव है कौन गुरुजी, कौन स्वामी जी, किसका सत्संग, भागे सब। रात भर सोए नहीं, जिसको जो मिला, जहां मिला, जैसे मिला, सेटल करने में लग गया। तो ये अर्थ का अनर्थ है कि अर्थ का सुख है? और हमारे कुछ पुरुष लोग बहुत प्रसन्न थे जबलपुर में, बोले हम पत्नियों से बोलते थे पैसा दे दो, कुछ चाहिए खर्च, वहां मिडिल क्लास लोग जाता है, बड़े पैसे वाले कम है, बोले पत्नी बोलती थी कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, अगले दिन बोले अपने आप निकाल के देने लग गए, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, चेंज करा के ले आओ। हाँ, बोले इतना पैसा निकला। तो ये क्या है, अर्थ का अनर्थ, इसका भय, डर, हाँ अभिमान, वो अगर नारायण से जुड़ा हुआ है, व्यवस्थित है, अच्छे काम में लग रहा है। भागवत में एक श्लोक है, यावत भ्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिना अधिकम योभिमन्येत साहिस्तेनो दंडमर्हति। जिससे तुम्हारा जीवन ठीक चल जाए, पहनने के लिए कपड़ा, खाने के लिए भोजन, आने जाने के लिए गाड़ी, रहने के लिए मकान, इसमें तुम्हारा अपना अधिकार है, वो तुम्हारा है। उससे ज्यादा जो तुम्हारे पास भगवान ने दिया है वो समाज का है, वो तुम्हारा अकेले का नहीं है। वो भगवान की सेवा में और समाज की सेवा में लगाते चलोगे तो भगवान और भेजते जाएंगे, और नहीं लगाओगे तो एक ना एक दिन वो समाप्त तो हो जाएगा, आपके हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जरूरत से ज्यादा जो है अच्छे काम में देना सीखो। एक्चुअल फिक्स डिपॉजिट वही है, जो अच्छे काम में दे दिया, साधु सेवा में, ईश्वर सेवा में, गरीबों की सेवा में जो चला गया, वो फिक्स डिपॉजिट ईश्वर के यहां हो गया। वहां कोई छापा नहीं पड़ने वाला है, यहां तो छापा पड़ जाएगा, यहां तो जानकारी लग जाएगी। क्यों भाई, जरूरत से ज्यादा हो तो देना चाहिए कि नहीं? बहुत कम लोग बोल रहे हैं। मैं नहीं मांग रहा हूं, चिंता मत करना। जहां आपको अच्छा लगे, जहां आपको लगे कि सदुपयोग हो रहा है, और मैं व्यासासन से बोल सकता हूं कि रामकृष्ण मिशन जैसा सदुपयोग शायद दूसरी जगह नहीं हो रहा हूं। यहां के महात्माओं को देखो, हाई एजुकेटेड महात्मा 24 घंटा सेवा में लगे हुए, 24 घंटा मानव सेवा में, जन सेवा में, अपने लिए वो कुछ नहीं करते, अपने लिए कुछ होता ही नहीं, प्रसंग बस बातें आ गए, उसमें सुखी रहोगे। लक्ष्मी जी ज्यादा आवे तो नारायण की सेवा में लगाते चलो, तो लक्ष्मी जी भी रहेंगी, नारायण भी तुम्हारे पास रहेंगे, सुखी रहोगे। एक्चुअल अर्थ वही है। उद्धव जी महाराज कहते हैं, अरे ब्रजवासियों, वास्तविक जो अर्थ है उस अर्थ को तुम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। अरे श्री कृष्ण तो मथुरा में है, कैसे प्राप्त कर लिया? बोले जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो श्री कृष्ण एक जगह ही तुमको दिखाई देते थे, जब श्री कृष्ण मथुरा में है तो आज भौरे के रूप में भी तुमको श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। श्री कृष्ण का वियोग तुम्हारा कहां है? सर्वत्र अब तुमको श्री कृष्ण दिखाई दे रहे। कोई भी काली चीज हो, कोई भी श्याम वस्तु हो, श्री कृष्ण का दर्शन होता है। उद्धव जी महाराज कहते हैं, कितना भी बड़ी तपस्या हो, श्लोक ही दान व्रत तपो होम जपस्वाध्याय सैमय ही श्रेयो भी विभिधान्य ही कृष्णे भक्तिर ही साध्यते। कितना बड़ा भी दान किया जाए, तपस्या किया जाए, हवन किया जाए, जप किया जाए, स्वाध्याय किया जाए, आत्मसंयम किया जाए, बोले उसका लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम। भगवान का प्रेम, ये सारे साधनों से जिसकी प्राप्ति होती है। उद्धव जी महाराज कहते हैं, ब्रजवासियों तुमको स्वाभाविक में प्राप्त हो गया है, साधनों का फल तुमको मिल गया है। जो सारे साधनों का फल है, तपस्या का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति, सुख, शाश्वत शांति की अनुभूति, शाश्वत शांति। तपस्या है, स्वाध्याय है, दान है, व्रत है, नियम है, जितने साधन है, सात्विक साधन, इनका फल क्या है? भगवान की अनुभूति। तीर्थ यात्रा के लिए भी लिखा है, जरूर तीर्थ यात्रा करो, वृंदावन जाओ, कुंभ में जाओ, चारों धाम जाओ, लेकिन जानते हो क्या लिखा है? प्रारंभिक साधन है, बुरा मत मानना, तीर्थ यात्रा का मैं कोई खंडन नहीं कर रहा हूं। तीर्थ यात्रा तपस्या है, तीर्थ यात्रा से हृदय शुद्ध होता है, ये प्रारंभिक साधन है, बिगिनिंग का साधन है। जब तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे घर में बैठे हुए ठाकुर में तुमको अपने ठाकुर का दर्शन होने लग जाए, सोच लेना तीर्थ यात्रा तुम्हारी सफल हो गई है, तीर्थ यात्रा का फल वही था। अपने घर के ठाकुर की पूजा हम ठीक से नहीं करते, भाग रहे हैं, कभी यहां, कभी वहां, कभी वहां, कभी वहां, माने अभी हमको अपने घर के ठाकुर में ठाकुर का दर्शन नहीं हो रहा है। मीराबाई स्वाभाविक जो तीर्थ हो गए हो गए, अलग से नहीं जाते। क्यों? उनके तीर्थों के तीर्थ गिरधर गोपाल उनके साथ रहते थे। तुम्हारे घर में जो ठाकुर बैठे हैं वो ठाकुर हैं या विग्रह? या मूर्ति है या चित्र है। मेरे को कई लोग कहते हैं यहां चलो यहां चलो, मैंने कहा ठीक है चलूंगा, मेरा कोई मना नहीं है, दुराग्रह नहीं है, लेकिन मैं बहुत परेशान होकर नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे को ठाकुर वहीं मिलेंगे, मेरे ठाकुर मेरे साथ रहते हैं, मेरे साथ में रहते हैं, मेरी पूजा मेरे साथ में रहती है। तो इसलिए तीर्थ यात्रा प्रारंभ, जब तक अपने घर में बैठे हुए ठाकुर में मन लीन नहीं हो रहा है, मन में रस नहीं आ रहा है, तब तक तीर्थ यात्रा करो, उससे हृदय शुद्धि होगी। दान पुण्य करो, व्रत करो, ये सारे साधन है भगवान के प्रेम के। उद्धव जी महाराज कहते हैं जिनसे मिलता है सब कुछ वो तो आप लोग कर चुके। हाँ। अच्छा सच बताओ, कितने बार आप मंदिरों का दर्शन कर चुके, कितने बार चारों धाम कर चुके, कितने बार कुंभ स्नान कर चुके, कितने बार गंगा जमुना स्नान कर चुके हैं ना, सब लोग कर चुके होंगे। लेकिन स्नान के पहले और स्नान के बाद कितना परसेंट फर्क जीवन में दिखाई दिया, ईमानदारी से बोलना। तपस्या होती है ठीक है, दान करते हो उससे हृदय शुद्ध होता। तीर्थ में जाओ, तीर्थ के कुछ नियम है, अगर तीर्थ में जाना भी है, अगर वहां कोई पवित्र नदी या सरोवर है तो उसमें पहले स्नान करो, उसके बाद वहां के बिना कुछ खाए। यहाँ तो लोग बांके बिहारी जाते हैं, दर्शन ना हुए तो चाट पकौड़ी पहले खा लेंगे दर्शन बाद। तीर्थ यात्रा का नियम नहीं है ये। ठाकुर जी का दर्शन करने जाओ, अगर तुम्हारा शरीर ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, तो बिना कुछ खाए पहले ठाकुर का दर्शन करो, स्नान करो, दर्शन करो, वहां गरीबों को या जो जरूरतमंद है उनको कुछ दान दो, उसके बाद भोजन इत्यादि करके तीर्थ में पता लगाओ अच्छे संत यहां कौन है जो तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, अच्छे संत कौन है, उनसे तीर्थ की महिमा और भगवान की महिमा का श्रवण करो। ये चार भाग हैं तीर्थ यात्रा के। आजकल तीर्थ यात्रा भी तो एक टूरिज्म हो गया है, एक घूमने का उपाय हो गया, साधन हो गया है। बहुत भीड़ होती है, पहले से बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन वास्तविक तीर्थ यात्रा कितने लोग करते हैं। भागे भागे गए, बिहारी जी का दर्शन किया, नहीं किया, लस्सी पिया। हाँ, कई लोग कहते हैं मेरे से महाराज दर्शन तो अच्छे ही थे, लस्सी बहुत अच्छी थी बिहारी जी की। अब मेरे समझ में नहीं आता कि उनको बिहारी जी ज्यादा अच्छे लगे कि लस्सी ज्यादा अच्छी लगे। तो ये जो तीर्थ यात्रा है ठीक है, ना करने से करना अच्छा है, लेकिन फिर भी तीर्थ यात्रा प्रारंभ का साधन है, जरूर करो। जब तक ठाकुर में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, गुरु सेवा में आनंद नहीं आता, ठाकुर सेवा में रस नहीं आता, करो, ये तपस्या है। उद्धव जी महाराज कहते हैं सारे साधनों का जो फल है वो आप लोगों को प्राप्त हो गया है। जहां कृष्ण नाम लेते ही आंखों से अश्रुपात होने लग जाता है, जहां कृष्ण नाम लेते ही शरीर में रोमांच हो जाता है, जहां कृष्ण नाम लेते ही कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जहां कृष्ण नाम लेते ही कृष्ण को देखने की छटपटाहट हो जाती है, अब उसके लिए कोई साधन शेष नहीं है, उसकी सारी साधना हो चुकी है, वो सारी साधना कर चुका है। उद्धव जी ने कहा आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि हमारा श्री कृष्ण से सच्चा प्रेम था, सच्चे प्रेम में वियोग हुआ जो नहीं होना चाहिए था, और वियोग के बाद हमारे प्राण नहीं निकले जो कि निकल जाना चाहिए था, इस प्रश्न का जवाब हमको उद्धव दे दो। उद्धव जी ने कहा उस समय मेरे को जवाब नहीं आया था, लेकिन अब मेरे को जवाब आ गया तुम्हारी कृपा से। हाँ, तुम्हारे जीवन को देख करके मेरे को जवाब आया। क्या जवाब आया? उद्धव जी ने इतना भावपूर्ण जवाब दिया है, विरहेण महाभागा महान में अनुग्रह कृतः। गोपियों, अगर श्री कृष्ण का वियोग तुमको नहीं होता, वियोग नहीं होना चाहिए था क्योंकि प्रेम तुम्हारा सच्चा था, श्री कृष्ण ने जानबूझ के वियोग दिया है, और वियोग में तुम्हारे प्राण जरूर निकल जाते लेकिन श्री कृष्ण ने रोका हुआ है। कैसे रोकते हैं? भागवत में वर्णन है, जब गोपियां कृष्ण विरह में रोते रोते मूर्छित हो जाती थी, तो उनको मूर्छा अवस्था में श्री कृष्ण का दर्शन हो जाता था, श्री कृष्ण का अनुभव हो जाता था। श्री कृष्ण हृदय से उनको लगा लेते थे, उनके साथ लीला करते थे, उससे उनके शरीर में पुनः संजीवनी आ जाती थी। ऐसे उनके प्राणों को रोका हुआ था। उद्धव जी कहते हैं क्यों रोका हुआ था? उद्धव जी कहते हैं गोपियों, अगर श्री कृष्ण तुम्हारे प्राणों को नहीं रोकते तो तुम्हारा जीवन चला जाता, और तुम्हारा जीवन चला जाता तो मेरे जैसे पंडितों को कृष्ण प्रेम की शिक्षा कौन देता, मैं तो रह ही जाता। हमारे लिए तुमको रोका हुआ है, हमारे जैसे लोगों के लिए। उद्धव जी ने कहा हमारे जैसे जिनको विद्या का स्वाभिमान था, अध्ययन का स्वाभिमान था, उनके लिए श्री कृष्ण ने तुमको रोका हुआ है। उद्धव जी महाराज प्रणाम करके फिर कहते हैं किशोर जी, गोपियों, अगर आपकी अनुमति होए, अब उद्धव जी व्यवहार कैसा कर रहे हैं? शिष्य जैसा। अगर आपकी अनुमति होए तो श्री कृष्ण ने कुछ संदेश भेजा है आप लोगों के लिए। मेरी बुद्धि तो काम अब कर नहीं रही, मैंने तो बहुत प्रयास कर लिया, वो व्यर्थ प्रयास था। श्री कृष्ण ने कुछ संदेश भेजा है, वो मैं आपको निवेदन कर दूं। गोपियां बड़ी उत्सुक हो गई, श्री कृष्ण हमको याद करते हैं, श्री कृष्ण ने हमारे लिए कुछ संदेश भेजा है। उनको तो आशा ही नहीं थी। यही प्रेमी का लक्षण है, अगर श्री कृष्ण याद नहीं करते तो प्रेमी श्री कृष्ण में दोष नहीं देखेगा। प्रेमी को लगेगा हमारे जीवन में कुछ कमी है, जिसलिए श्री कृष्ण हमको याद नहीं करते, ये प्रेम है। गोपियों को जब पता लगा श्री कृष्ण ने कुछ संदेश भेजा है, बहुत प्रसन्न हो गई। अवश्य सुनाओ क्या कहा है हमारे कन्हैया ने, क्या कहा हमारे श्री कृष्ण ने हमारे लिए। 9 श्लोकों में संदेश, प्रारंभ के 5 श्लोक वेदांत के, उसके बाद के 4 श्लोक भक्ति के। भगवान भी तो बड़े लीलाधारी हैं। उद्धव जी महाराज वेदांत प्रिय थे अभी तक, यहां आने के पहले तक उनको शंकर वेदांत बहुत अच्छा लगता था। ब्रह्मचिंतन उनके जीवन का लक्ष्य था, आवागमन से मुक्त होना, मोक्ष की अनुभूति कर लेना। इसलिए भगवान ने जो संदेश दिया था वो जानबूझ करके प्रारंभ का संदेश वेदांत का है और उसके बाद का संदेश भक्ति का है, ज्ञानोत्तरा भक्ति जिसको बोलते हैं। लेकिन ये कौन सा ज्ञान है? ये श्रोत्रिय वाला ज्ञान है, पुस्तक वाला ज्ञान है, ग्रंथ वाला ज्ञान है, अनुभव वाला नहीं। अनुभव वाला ज्ञान तो उद्धव को बाद में हुआ है, 11वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने स्वयं उपदेश दिया है। तो ये जो पुस्तक पढ़ पढ़ के ज्ञान हो जाता है ना, कि हमारी अविद्या निवृत्त हो गई, हमारा ज्ञान दूर हो गया, हमको ज्ञान हो गया। हमारे गुरु जी के पास, हमारे गुरु जी के शिष्य यही दिल्ली में एक सेठी जी करके अभी हैं, उनका सेठी जी, वो महाराज जी के वेदांत की पुस्तक पढ़ते थे, मांडूक कारिका ब्रह्मसूत्र। और एक बार पढ़ के गए, जोश में थे, गुरु जी थे, गुरु जी का लीला विग्रह उस समय था, मैं उस समय पढ़ता था। गुरु जी को जाके प्रणाम किया, उन्होंने कहा महाराज जी हमको ज्ञान हो गया। इतना आवेश महाराज जी को ही बोल दिया जाके, महाराज जी हमको ज्ञान हो गया। महाराज जी लेटे हुए थे, उठ के बैठे, मुस्कराए, बोले घबराओ नहीं, अभी कई बार होगा। अभी तो कई बार होगा, अभी तो एक ही बार हुआ। ये जो ज्ञान होता है ये खत्म भी हो जाता है। ज्ञान अपना स्वरूप है, पर्दे क्या आवरण हटता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है। ज्ञान होता नहीं, भौतिक ज्ञान होता है, संगीत का ज्ञान है, शास्त्र का ज्ञान है, बहुत सारी कलाओं का ज्ञान है, ये ज्ञान होता है और ये ज्ञान मिट भी जाता है। जो आत्मज्ञान है वो तो स्वरूप है। तो वो ज्ञान का आवेश बहुत लोगों को होता है, उद्धव जी को भी थोड़ा था और वृंदावन आने के पहले मेरे को भी थोड़ा था। मैं भी पुराना वेदांती था, भक्ति से मेरा कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन मैं कह सकता हूं 25 साल में वृंदावन रहा, 82-83 में आ गया था महाराज जी के आश्रम में, लगभग 25 साल। और मैं ये भी कह सकता हूं मंच से कि मैंने कोई अलग से कोई खास साधना नहीं किया। गुरु जी ने एक डेढ़ घंटे का जो कुछ बताया वो अभी भी करता हूं, पहले भी करता था। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने ईमानदारी से जीवन जिया, गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति। दुनिया क्या समझे उसकी मैं ज्यादा परवाह नहीं करता। अपने गुरु के प्रति कभी कुछ कपट नहीं किया, कभी कुछ छिपाया नहीं। ठाकुर जी के प्रति कभी कुछ छिपाया नहीं। कोई जीवन में दोष है तो उनको भी निवेदन कर दिया, प्रभु मेरी सामर्थ्य से बाहर है, आप इसकी निवृत्ति करें, और उन्होंने किया। केवल ईमानदारी से जीवन जिया। लेकिन वृंदावन में रहते रहते कब भक्ति का प्रवेश हो गया वो मेरे को भी पता नहीं लगा। ये वृंदावन की महिमा है, ये व्यक्ति की महिमा है, ये ब्रज की महिमा है। आज भी ब्रजभूमि ब्रजभूमि है, आज भी वृंदावन वृंदावन है। आप केवल वहां निवास करने लग जाएं, कुछ चीजों का ध्यान रखें। राजनीति की चर्चा नहीं करें, निंदा स्तुति की चर्चा नहीं करें, किसी को परेशान करने का प्लान नहीं बनावे, प्लानिंग करके किसी को दुखी ना करें। माला कम करोगे तो चलेगा, लेकिन किसी को परेशान मत करो, किसी को अपमानित मत करो, और वृंदावन में बास करो। मैं कह सकता हूं 5 साल में 6 साल में आपके अंदर कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। यह ब्रजभूमि की महिमा है, आज भी है। युग कितना भी बदल गया हो, समाज में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन ब्रज तो ब्रज है। आज भी पूरे भारत के तीर्थों में मैंने भ्रमण किया है, दर्शन किया है, लेकिन ब्रजभूमि जैसा तीर्थ आज भी कोई नहीं। ब्रजभूमि गोवर्धन जी, वृंदावन, गोकुल, और अभी हम लोगों ने ब्रज 84 कोस यात्रा किया, खेतान जी साथ में थे। ऐसी ऐसी जगह है, बंसीवट, जमुना जी के उस पार जो बंसीवट है, कई लोग नहीं गए होंगे क्योंकि मैं ही पहली बार गया। बंसीवट जो इस पार है वो तो देखाते, जमुना जी के उस पार भांडीर बन बेल बन के पास जो बंसीवट है, आज भी वो कदम्ब का वृक्ष आश्चर्य होता है। उसके वृक्ष के तने में आप कान लगाओ, आपको कोई ना कोई ध्वनि आज भी सुनाई देती है। किसी को मृदंग की ध्वनि, किसी को बांसुरी की ध्वनि, किसी को मंजीरे की ध्वनि। हम लोगों को मृदंग की ध्वनि सुनाई दी, और अभी 1 महीना पहले की घटना है। आप कैसे कह सकते हैं कलयुग आ गया है? ठीक है, कलयुग आ गया है, लेकिन ब्रज के बाहर, ब्रज की सीमा के अंदर आज भी ठाकुर विद्यमान है, आज भी वहां की महिमा है। ऐसे ऐसी जगह देखने को मिले ब्रज 84 कोस यात्रा में। ठीक है, गाड़ियों से किया क्योंकि उतना समय नहीं था, 8 दिन लगा। पैदल में तो 1 महीने से ज्यादा लगता है, 35 दिन लगता है, लेकिन फिर भी इतना आनंद, इतना रस। और ऐसी ऐसी जगह है, गांव में आप जाओ, हम लोग तो प्रायः वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन, बरसाना, गोवर्धन में आज भी वाइब्रेशन है, लेकिन जो गांव में आज ब्रजवासी हैं और गांव में आज जो अनुभूतियां हैं, जहां राधा रानी का विवाह हुआ था भांडीर बन, वहां आप जाओ, जहां बंसीवट है वहां जाओ। मेरे को भी पहले विश्वास नहीं हुआ, वहीं के एक ब्रजवासी ने कहा, बोले इस तने पे कान लगाओ। मैं था, स्वामी मुक्तानंद जी थे, संविदानंद जी थे, बाबा कल्याणदास जी थे, स्वामी निरंजनानंद जी थे, 150 लोग हम लोग साथ में थे, 30-35 गाड़ियां साथ में चलती थी। कान लगा करके सुना, मृदंग की आवाज आ रही थी। केवल मैंने नहीं सुना, बाकी संतों को भी कहा, एक ही डाली पे हमने सुना, दूसरे पे नहीं आ रही थी। अब किसको ठाकुर क्या सुनाना चाहेंगे वो तो उनकी इच्छा है, जरूरी नहीं कि सबको मृदंग ही सुने, किसी को बांसुरी सुने, किसी को मजीरा सुनेगा। तो ये ब्रज को आज निधिवन, जो वृंदावन के बीच में, शहर के बीच में, वहां सूर्यास्त के बाद ना आदमी रहता है ना बंदर रहता है। कल्पना कर सकते, वृंदावन के बंदरों को कोई नहीं भगा सकता है, किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वहां के बंदरों को बाहर हटा दे। इतने नटखट बंदर है वृंदावन के, आंख से चश्मा निकाल ले, मोबाइल निकाल ले, पर्स छीन ले, पहले केला खा के दे देते थे, आजकल उन्होंने स्टैंडर्ड बढ़ा लिया, फ्रूटी लेते, फ्रूटी, बिना फ्रूटी लिए चश्मा नहीं देते स्वामी जी, पहले केला लेके दे देते थे, एक हाथ से फ्रूटी दो दूसरे हाथ से चश्मा लो, ऐसे बंदर। वो बंदर सूर्यास्त होते ही स्वामी जी निधिवन छोड़ के बाहर चले जाते हैं। आज भी सायंकाल कोई वहां खड़ा होके देख सकता है, सैकड़ों की संख्या में बंदर है। आज भी रात्रि में वहां ठाकुर जी का महाराज होता है। वो अधिकारी, आज के कोई अधिकारी नहीं जो उसको देख सके, वहां कोई रात्रि में रहता नहीं। एक दो बार एक व्यक्ति जिद करके रह गए, एक तो सवेरे पागल मिला और एक की डेथ हो गई थी, मिला नहीं। हमारे मीडिया के कुछ बंधुओं को विश्वास नहीं हुआ, ये 2 साल पहले की घटना है। मीडिया के लोग गए, ये वीडियो कैमरा लेके गए, सीसीटीवी कैमरा लेके गए, जो राधा रानी के श्रृंगार का कक्ष है वहां पर सामान रखा जाता है रात्रि को। सुबह वो बिखरा हुआ मिलता है, प्रसाद भी, पान का बीड़ा भी, श्रृंगार का सामान भी, और वो इस बात का सूचक है कि किशोरी जी ने आके यहाँ श्रृंगार किया है। सबके सामने वो ताला लगाया गया वहां पे, मीडिया के सामने, कैमरों के सामने, सीसीटीवी कैमरे लगा दिया मीडिया वालों ने, और वो ताले की चाबी वो स्वयं ले गए मीडिया वाले। सवेरे फिर कैमरे के सामने ताला खोला गया और वो सामान बिखरा हुआ मिला, तब वो मीडिया वाला, और संयोग की बात आप देखें, जो मेन आदमी था मीडिया का वो मुस्लिम धर्म से था, वो कहता हमारे धर्म में तो मीडिया वाले तो पहले इस बात को नहीं मानते, फिर अगर मुस्लिम है तब तो बिल्कुल नहीं मानेगा, लेकिन बोले मैंने जो देखा है उसको मैं मना नहीं कर सकता हूं, रात्रि में यहां चमत्कार होता है। ये उसका कमेंट था, मीडिया पे कमेंट था। आप मीडिया वालों को कौन मना सकता है, वो ब्रज है, आज भी वो ब्रज है। तो आप जाएं, वृंदावन जरूर जाएं, लेकिन भागे भागे मत जाएं, कुछ समय लेके जाएं। वहां स्नान तो ठीक है, स्नान करने लायक तो जमुना जी रही नहीं। अब देखो हमारी सरकार प्रयास कर रही है, कितना सफल होता नहीं होता है। वहां बांके बिहारी का दर्शन करें, निधिवन का दर्शन करें, जो जरूरतमंद है उनको दें। आप ये मत देखें कि बदमाश है, पता नहीं ठाकुर किस रूप में वहां बैठा हुआ है, आपको देने से मतलब है, कौन है क्या है मत सोचो। और जो अच्छे महात्मा है उनसे सत्संग की चर्चा करो, हो सके तो 2 दिन 4 दिन अगर आपका जीवन में समय है तो रहना प्रारंभ करो, गिरिराज जी में या वृंदावन में, दोनों सिद्ध स्थल है। आपको कुछ समय के बाद अनुभूतियां होना प्रारंभ हो जाएंगी। वो ब्रज है क्योंकि उस ब्रज में श्री राधा रानी ने निवास किया है, आज भी उनका आधिपत्य है। इन ब्रज गोपियों ने वहां निवास किया है, इन ग्वाल बालों ने वहां निवास किया है। तो उद्धव जी महाराज संदेश सुनाना प्रारंभ करते, पहले वेदांत का, भगवान ने ऐसा क्यों किया, जानते थे इनको वेदांत का आवेश है, इनका आवेश तो मिटाना पड़ेगा। उद्धव जी कहते हैं भगवान ने कहा है, भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतान भूतेषु खम वायुर अग्नि जलम मही तथा हम च मनः प्राण भूतेन्द्रिय गुणाश्रयाः आत्मन्नेवात्मनात्मानं सृजे हनुन्पालये आत्मायानुभावेन भूतेन्द्रिय गुणात्मना। भगवान गोपियों को क्या संदेश दे रहे, जरा ध्यान से सुनना, सुन के हंसी आती है। भगवान कहते हैं अरे गोपियों, जैसे पंचभूतों से बने हुए पदार्थ में केवल पंचभूत ही होते हैं, या और सरल करके समझ ले, मिट्टी से बने हुए बर्तन में केवल मिट्टी ही मिट्टी होती है, सोने से बने हुए ज्वेलरी में केवल सोना ही सोना होता है, ऐसे ये सारा संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण मैं हूं। अभिन्न निमित्त उपादान कारण, ये शब्द सुना होगा अगर वेदांत कुछ पढ़ते होंगे, उपादान कारण माने मैटीरियल और निमित्त कारण माने बनाने वाला। जैसे सोने की ज्वेलरी में उपादान कारण है सोना, और जो ज्वेलर्स है वो है निमित्त कारण, बनाने वाले को बोलते हैं निमित्त कारण, मटेरियल को बोलते हैं उपादान कारण। भगवान कहते हैं संसार का उपादान कारण भी मैं हूं और निमित्त कारण भी मैं हूं, माने अर्थ क्या हुआ, बनने वाला मटेरियल भी मैं हूं और बनाने वाला कलाकार भी मैं हूं। भगवान ही बने हैं, भगवान ने ही बनाया है। भगवान कहते हैं गोपियों मैं ही बना हूं सब रूपों में, मैंने ही बनाया है, इसलिए मेरा तुम्हारा कभी वियोग संभव नहीं है। सब रूपों में मैं ही तो बैठा हूं। अब आप कल्पना करो, जो व्यक्ति उस कन्हैया के लिए रो रहा है जो माखन चोरी करता था, उस कृष्ण के लिए रो रहा है जो रासलीला करता था, उस कृष्ण के लिए तड़प रहा है जो बांसुरी बजा के बुलाता था, उस व्यक्ति को सुनाया जाए कि वो कृष्ण सर्व रूप में व्याप्त है, सर्वत्र व्यापक है, सब जगह रहता है, उस व्यक्ति को ये समझ में आएगा कि उसको लगेगा कि समझाने वाला बेवकूफ है। जो कृष्ण के लिए रो रहा है उसको तुम वेदांत सुनाओगे, उसको भगवान व्यापक है ये सुनाओगे? भगवान ने संदेश भेजा, क्यों भेजा? उद्धव जी को समझने के लिए, देखो तुम्हारा वेदांत कितना काम करता है। ऐसे प्रेमी भक्तों के बीच में, और भगवान दूसरा क्या कहते हैं, आत्मनि आत्मना आत्मानम सृजे। आत्मनि माने अपने आत्मा अधिष्ठान स्वरूप में ही, आत्मना माने अपने द्वारा, आत्मानम माने अपने को मैं बनाता हूं, अपने में अपने को पालन करता हूं, अपने में अपने को लीन कर लेता हूं। बात तो ठीक है, भगवान ही सृष्टि करता है, भगवान ही पालन करता है, भगवान ही संहार करता है, बनने बनाने वाले वही हैं, पालन करने वाले वही हैं, लीन भी अपने में ही कर लेते हैं, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूं, निष्क्रिय निराकार, ये तो अध्यारोप है। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं हूं वही तुम हो, वही सारा संसार है, एक ही परमात्मा सर्व रूप में विद्यमान है, उपाधि भेद से अनेक जैसा दिखाई दे रहा है, जैसे एक ही विद्युत माइक में अलग काम कर रही है, लाइट में अलग काम कर रही है, एयर कंडीशन में अलग काम कर रही है, वीडियो में अलग काम कर रही है। हाँ, विद्युत एक है, उपाधि भेद से काम अलग अलग हैं, ऐसे ही सुपर पावर बोलो, परमात्मा बोलो, गॉड बोलो, ईश्वर बोलो, अल्लाह बोलो, जो बोलना है बोलो, वो जो परम शक्ति है वो एक है, उपाधि भेद से उसका कार्य विभाग हो जाता है। बिजली किसी की साधक बाधक नहीं है, ध्यान रखना। इस बिजली में हम सत्संग कर रहे हैं तो भी कनेक्शन वो पूरा दे रही है, इसी बिजली में माइक लगा के कोई किसी को गाली देगा तो क्या बिजली मना कर देगी कि मैं तुमको पावर नहीं दूंगी? ऐसे जो निर्गुण दाकार परमात्मा है वो किसी का साधक बाधक नहीं है, वो तो पावर है, वो तो सत्ता है, साधक बाधक है सगुण साकार परमात्मा। हमारा बांसुरी वाला ठाकुर, हमारा धनुष बाण वाला ठाकुर, हमारा त्रिशूल वाला ठाकुर, हमारी भगवती शेरा वाली भगवती, ये साधक बाधक है। वो परमात्मा जब एक रूप लेकर के आ जाता है तब दुष्टों का संहार और संतों की रक्षा और धर्म की स्थापना। अब ये प्रवचन दिया जा रहा है किनको? आपको नहीं, गोपियों को। ये संदेश भगवान ने किसके लिए भेजा? गोपियों के लिए। और किसके द्वारा भेजा? उद्धव जी के द्वारा। एक्चुअल वो गोपियों को सुनाने के लिए नहीं भेजा था भगवान ने, ये उद्धव को ही समझाने के लिए भेजा गया था, ये तुम्हारी वेदांत की बातें जो तुम सुनाते रहते हो वही तो मैं संदेश भेज रहा हूं। उद्धव जी जब ये उपदेश सुना रहे थे तो गोपियां आश्चर्यचकित होकर देख रही हैं उद्धव के मुख को, ये क्या कह रहा है, इसकी बुद्धि को क्या हो गया? जो ठाकुर हमारे साथ नाचता था गाता था वो कहता हो तो सब जगह रहता है, सब रूप में रहता है, सब रूप में रहता है तो हम तो रो रो करके पुकार रही हैं, हमको क्यों नहीं मिल रहा, हमको क्यों नहीं दिख रहा है? गोपियां बहुत आश्चर्य आश्चर्यवत पश्चित कश्चित एनम, गीता का श्लोक, बड़े आश्चर्य से उद्धव की तरफ देख रही हैं, ये कह क्या रहा है? हाँ, वो स्तर नहीं था कहने का, वो ठीक समय नहीं था कहने का, वो ठीक सिचुएशन नहीं थी कहने की। गोपियां कोई रिएक्शन नहीं दे रही, आश्चर्य होकर देख रही है उद्धव जी को। उद्धव जी को भी लग रहा है इतना उत्तम कोटि का मैं ज्ञान सुना रहा हूं, वेदांत सुना रहा हूं, और इनके चेहरे पर तो कुछ रिएक्शन इंप्रेशन ही नहीं। गोपियों को लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा है, पांच श्लोक ज्ञान के पूरे कर दिए, फिर भगवान ने जो भक्ति के श्लोक भेजे थे, भगवान ने कहा यत्त्वहं भवति नाम वही दूरे वर्ते प्रियो दृशाम मनसा सन्निकर्षार्थम अर्जुन ध्यान कामया। अरे गोपियो, मैंने तुमसे जो दूरी बना रखी है ना, उसमें कुछ कारण है। अब बात समझ में आ रही गोपियों की, अब बात समझ में आ रही क्या कारण है प्रभु, आपने हमसे दूरी क्यों बना रखी है, क्या हमसे कोई अपराध हो गया? नहीं गोपियो, तुमसे अपराध का तो संभावना ही नहीं है। क्यों दूरी बना रखी है? भगवान कहते हैं जब मैं साथ में रहता था तो उतना चिंतन शायद मेरा नहीं होता था, वियोग दशा में तुम्हारा चिंतन बढ़ गया है, तुम्हारी भक्ति बढ़ गई है, तुमको सर्वत्र मेरा दर्शन होने लग गया है, इस अवस्था में तुमको लाने के लिए मैंने जान बूझ करके वियोग दिया है। मनसा सन्निकर्षार्थम, भगवान कृष्ण जब पास में थे तब तो पता रहता था गाय चरा के आएंगे, अभी मिल जाएंगे, काम में लगी रहती थी, ठाकुर की तैयारी में लगी रहती थी। अब तो पूरा दिन कृष्ण वियोग में सर्वत्र कृष्ण कृष्ण दिखाई देते हैं, मन में कृष्ण, वाणी में कृष्ण, क्रिया में कृष्ण। और यही प्रेम लक्षणा भक्ति का तरीका है बढ़ने और बढ़ाने का। केवल संयोग ही संयोग रहेगा तो भी भक्ति नहीं बढ़ेगी, और केवल वियोग ही वियोग रहेगा तो भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि निराशा हो जाएगी। इसलिए भगवान जब भक्ति को बढ़ाते हैं ना, प्रतिक्षणम वर्धमानम प्रेम स्वरूपम, जो नारद जी ने लिखा है वो ऐसे ही बढ़ता है, संयोग फिर वियोग, संयोग फिर वियोग, ये दोनों भक्ति की घाटियां हैं। भगवान ने का जब ये संदेश सुना, गोपियों की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। धन्य हो प्रभु, पास रह के भी आप हमारा हित चिंतन करते हैं और दूर रह के भी हमारा हित चिंतन करते, हमारा प्रेम कैसे बढ़े, कृष्ण प्रेम कैसे बढ़े। यथा दूर चरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते। अच्छा, बेटा जब आपके पास रहता है तब उसका ज्यादा चिंतन होता है कि जब विदेश चला जाता तब ज्यादा चिंतन होता है? जब वियोग हो जाता है, साल में जब एक बार आता है तो महाराज कितना उसकी आवभगत होती है, एक हफ्ते के लिए आएगा, दो हफ्ते के लिए आएगा, और जब वहीं रहने लग जाता है तब फिर नहीं उतनी होती। अब हम लोग अगर साल में एक बार आते हैं तो कई लोग कहते हैं महाराज हमारे यहाँ भोजन, हमारे यहाँ भोजन, अगर हम यहीं डट जाएं तो बुरा मत मानना। फिर कहेंगे महाराज अभी तो आज ऑफिस है, अभी फैक्ट्री जाना है, कल आपसे मिलेंगे। कलकत्ता में मैं एक बार था, एक व्यक्ति बोला महाराज हमारे घर में भोजन। मैंने कहा भाई अभी तो गया था 10 दिन पहले। नहीं नहीं, एक बार में संतोष नहीं होता है। मेरे को थोड़ा विनोद सूझा, मैंने कहा अच्छा तू बता दे कितने दिन में संतोष होगा, मैं सामान उठाता हूं तेरे घर चलता हूं। अब तो वो चुप हो गया महाराज, वो देखने लग गया मेरे को, क्या सही में स्वामी जी मेरे घर चल पड़ेंगे? कितने दिन में संतोष होगा तू बता दे। मैं कार्यक्रम अपना आगे का रद्द कर देता हूं, जब तक तेरे को संतोष नहीं होगा तेरे घर में ही रहूंगा, वहीं खाऊंगा, वहीं रहूंगा। वो नहीं बोला आगे फिर। बोले महाराज तो चलिए फिर आगे की बात करेंगे। ये जो है ना ये संसार, तो वियोग और संयोग दोनों जब रहता है तो प्रेम बढ़ता है। हमेशा आप किसी के पास बने रहो तो भी महत्व कम हो जाता है, और हमेशा के लिए दूर हो जाओ तो निराशा हो जाती है। इसलिए कभी मिलते रहो। एक महात्मा किसी के यहां से जाने लग गए तो उन्होंने कहा महाराज अभी आपका जाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत कम समय मिला। महात्मा बड़े समझदार और विनोदी, महात्मा विनोदी होते ही क्योंकि वो सहज होते हैं, उनके जीवन में कोई तनाव नहीं होता है। महात्मा ने कहा जब तक अच्छा न लग रहा हो तभी तक चले जाने में अच्छा है। पॉइंट समझ गए ना? जब जाना अच्छा लगने लग जाए तो जाना तो व्यर्थ हो गया फिर। महात्मा का जाना तभी अच्छा है जब जाना अच्छा न लग रहा हो, तो उसके महत्व तो है। अभिप्राय उद्धव जी इसे जब गोपियों ने सुना, भगवान कृष्ण इसलिए वहां दूर चले गए हैं कि कृष्ण प्रेम हमारे जीवन में और बढ़ता रहे, वियोग अवस्था में भी बढ़ता रहे निरंतर। भगवान कृष्ण कहते हैं या मया क्रीडता रात्र्याम वनेश्विन ब्रज आस्थिता अलब्ध रासा। भगवान कहते गोपियों तुमको याद है जब रास लीला में मैंने बांसुरी बजाई थी, सब गोपियां घर परिवार का काम छूट गया था, भाग के आ गई थी, एक गोपी को लोगों ने घर में बंद कर दिया था, बाहर से ताला लगा दिया था, भागवत में कथा है। वो गोपी को इतना वियोग का अनुभव हुआ, पांच भौतिक उसका शरीर छूट गया और दिव्य शरीर धारण करके रासलीला में सबसे पहले पहुंच गई। भगवान कहते गोपियों सच बताओ, ज्यादा कृष्ण प्रेम किसके जीवन में प्रकट हुआ, जिनको संयोग मिला उनके या जिनको वियोग मिला उसके? तो वियोग भी प्रेम बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, इसलिए मैंने तुमको जानबूझ करके कुछ दिनों का वियोग दिया है। भगवान कृष्ण की इन बातों को सुन करके गोपियों के शरीर में प्रेम बढ़ने लग गया, कृष्ण प्रेम, शरीर रोमांचित हुआ, श्री कृष्ण को याद कर करके पुनः अश्रुपात होने लग गया। धन्य हो ठाकुर, इतना ध्यान इतना प्रेम, रहे तो भी आनंद दिया और बाहर है तो भी हमारा इतना चिंतन इतना ध्यान, ऐसा कह करके गोपियां भावावेश में आ जाती हैं। उद्धव जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अब आगे गोपियां क्या कहेंगी, उद्धव जी के साथ उनका क्या और संवाद होगा, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और कल इस प्रसंग को विश्राम दिया जाएगा, जो बड़ा सुंदर ब्रज का प्रसंग है। आज इतना ही। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम।